वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 26वां अध्याय राजा पुरंदर का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। आखेट मतलब क्या है?
शिकार
को आखेट बोलते हैं क्या? मराठी मतलब पर आखेट मतलब क्या?
शिकार।
श्लोक संख्या 8। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो
नष्टप्रज्ञो व्रजत्यथः
अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो
नष्टप्रज्ञो व्रजत्यथः
अन्यथा कर्म कुर्वाणो
मनारूढो निबध्यते
गुणप्रवाह पतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यथः
अन्यथा कर्म कुर्वाणो
मनारूढो निबध्यते
गुणप्रवाह पतितो
नष्टप्रज्ञो व्रजत्यथः
अन्यथा कर्म कुर्वाणो
मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो
नष्टप्रज्ञो व्रजत्यथः
अन्यथा कर्म कुर्वाणो
मनारूढो निबध्यते
गुणप्रवाह पतितो
नष्टप्रज्ञो व्रजत्यथः
मनारूढो अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। अन्यथा जो मनुष्य मनमना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए खो जाता है। इस प्रकार वह मल के एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्रह्मलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। तो इसका तात्पर्य काफ़ी लंबा है और आप पिछले कई दिनों से तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तो अभी तात्पर्य का अंतिम भाग हम पढ़ेंगे यहाँ से।
हाँ।
कि यहाँ से राष्ट्र प्रज्ञा श्लोक। इस श्लोक में भौतिक परिस्थितियों को गुण प्रवाह कहा गया है। अतः श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में कहा है, मिछे मायार वशे याच्छ भेषे खाच्छा हाबू डुबू भाई। तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो, तुम कभी प्रकृति के तरंगों में ऊपर और कभी नीचे क्यों जा रहे हो। जीव कृष्णदास ए विश्वास कोरले तो आर दुख नाए। अतः तुम अपने आप को कृष्ण का दास मान लो, तब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो ही कोई कृष्ण की शरण में आता है और भगवद गीता को ज्ञान के पूर्ण मानक रूप में स्वीकार कर लेता है, वह प्रकृति के गुणों से बाहर आ जाता है और वह कभी नीचे नहीं गिरता तथा अपने ज्ञान को नहीं खोता। नष्ट प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, और नष्ट प्रज्ञा का अर्थ है जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसके पास केवल अनुमान मनोधर्म रहता है। ऐसे मनोधर्म से मनुष्य नीचे की ओर गिरता हुआ नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है। शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, और जब हृदय शुद्ध नहीं होता तो वह प्रकृति के तीनों भौतिक गुणों के अनुसार कार्य करता है। इन कार्यों का सुंदर वर्णन भगवद गीता के 17वें अध्याय में श्लोक 1 से लेकर 6 में हुआ है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में प्रकृति के तीन गुणों के विषय में ही मुख्य रूप से वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, इन सब से परे अतीत हो जाओ। समस्त द्वंद्वों तथा लाभ और सुरक्षा की समस्त चिंताओं से मुक्त बनो और आत्मपरायण हो। संपूर्ण संसार तथा सारा भौतिक ज्ञान इन तीन गुणों में निहित है। मनुष्य को इन तीनों से ऊपर उठना होता है और इस दिव्य पद को पाने के लिए भगवान के आदेशों का पालन करना होता है। इस प्रकार यह जीवन सार्थक हो जाता है, अन्यथा वह भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की लहरों से नीचे फेंक दिया जाएगा। इसकी आगे की व्याख्या प्रहलाद महाराज के शब्दों में श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। मतिर्न कृष्णे परतस्पतोवा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां। भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक सुखों में इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने भौतिक अनुभवों के अतिरिक्त कुछ भी पता नहीं रहता, और वे प्रकृति के गुणों की लहर में बह जाते हैं। वे चर्वित चर्वण का जीवन व्यतीत करते हैं और वे अपने अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार वे नारकीय जीवन के अंधकारमय स्थानों में जाते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विश्वपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछा कल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सब के बीच में आके मुझे ऐसे लगता है कि प्राणवायु फिर से आ गई, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने सुंदर सात्विक स्थान में आप सब निवास करते हैं और यहाँ आपकी सेवा साधना वगैरह इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ है आप सब, ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है। पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है और उससे ज़्यादा दुर्लभ है भारतवर्ष में मनुष्य जीवन पाना, उससे दुर्लभ है भक्तों का संग पाना, उससे दुर्लभ है गोकुलधाम में रहना और यहाँ भक्तों का संग पाना और भक्ति करना। तो भक्ति बहुत सुलभ मार्ग है। भागवतम में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ता है तो उसका भविष्य निश्चित है और वो सुरक्षित है। कि जिस तरह कोई व्यक्ति एक राजमार्ग में चलता है और आंखों दोनों आंखें बंद करके चलता है, तो आचार्यों ने बताया है कि ये दो आंखें बंद करके चलने का तात्पर्य क्या है। दो आंखें अर्थात श्रुति और स्मृति शास्त्र। शास्त्र क्या होते हैं? शास्त्र ज्ञान के ग्रंथ हैं, शास्त्र भगवान के वाणी है, भगवान का वाणी ही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो हमें शास्त्रों के माध्यम से देखना चाहिए, केवल हमारे इन स्थूल आँखों से नहीं। इसलिए ऐसे दृष्टि को शास्त्र चक्षु कहते हैं, चक्षु अर्थात आँखें। तो शास्त्र हमारी आँखें होनी चाहिए जिनके द्वारा हम देख सकें, क्योंकि हमारी आँखें जो हमें दिखाते हैं, हमारे कान जो हमें से हमें सुनाई पड़ता है, हमारे जीभ से जो हमें स्वाद करने के लिए मिल जाता है इत्यादि, वो हमें गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, हमें भ्रमित कर सकते हैं। और क्योंकि भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, हमें ऐसे बहकावे में डाल सकती है कि यही सही है और यही प्राप्य वस्तु है और यही करने लायक कार्य है। तो जब हम अपने दृष्टि से देखते हैं, मनोरथे नासति धावतो बही, जैसे भागवत में प्रह्लाद ने बताया है कि जब हम मन के रथ के ऊपर सवार होकर हमारे जीवन को बिताते हैं तो क्या होता है? मन तो कहीं भी भटकता है, मन तो बहुत चंचल होता है, कभी मन यहाँ है तो कभी वहाँ। मन का धर्म है अस्थिर होना, चंचल होना, संकल्पो विकल्पो मनः। मन का काम है संकल्प, कुछ स्वीकार करना, फिर विकल्प, फिर उसको त्याग देना, लेना त्यागना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। तो मन बहुत चंचल होने के कारण इसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। समझिए कि एक व्यक्ति है, आप उसको जानते हैं, हो सकता है वो आपका मित्र हो या आप व्यवसाय कर रहे हैं और उसके साथ व्यवसाय आपको करना है, और आपने देखा है कि उसका स्वभाव कुछ ऐसे है कि अब कुछ बोलता है, थोड़ी देर बाद कुछ और ही बोलेगा, फिर उसके बाद कुछ और बोलेगा। तो आप सोचेंगे इसके साथ व्यवसाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज बोल रहा हूँ इतने भाव में दूंगा, तो कभी हमारे आधे रस पर हंस रहे व्यवसाय का नाम सुन के। कृष्ण के लिए व्यवसाय करना बहुत अच्छा है ना। तो ऐसा भरोसा कर सकते हैं कि आधे रस प्रभु ऐसे व्यक्ति के ऊपर अभी बोलता है मैं आपको 100 रुपये में दूंगा, फिर दो थोड़ी देर बाद बोलता है नहीं 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 125 में दूंगा, बोलते नहीं 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 140 में दूंगा। तो अरे क्या है तुम्हारा, एक एक पे बने रहो, कभी ऐसे बोलते हो कभी वैसे बोलते हो। हाँ, तो आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो पता नहीं वो क्या बोलेगा कब क्या करेगा। हाँ, तो मन ऐसे ही है, मन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। यदि मन के ऊपर भरोसा करके हम जाए कि मन जो कहेगा वो हम करेंगे, तो फिर हम गलत रास्ते में चले जाएंगे। क्योंकि मन का रथ ऐसे ही होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कोई भरोसा नहीं मन कब क्या करेगा क्या बोलेगा। इसलिए मन को नियंत्रित करना है तो बुद्धि की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने भगवद गीता के तात्पर्य में एक रथ की उपमा देते हैं। आपको पता है, आप में से कोई बता सकते हैं वो रथ की उपमा क्या है मन शरीर बुद्धि आदि के लिए? उपमा यानी जानते हैं ना क्या है वो, शरीर और रथ की तुलना। हाँ,
रथ रथ शरीर है और उसमें बैठे हुए सवारी हैं, तो पीछे बैठा हुआ सवारी जो है वो आत्मा है, यानी वो रथ का मालिक, और जो सामने से सारथी है वो बुद्धि है, और उसके हाथ में जो लगाम है वो मन है, और जो पांच घोड़े हैं वो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन जो है साधारणतः जो बद्ध जीव के संबंध में लगाम और पांच इंद्रियां जो है वो सारथी है, उसके काबू से बाहर है। तो रथ को वो जहाँ चाहे वहाँ पे खींच के लेके जा रहे हैं, और बुद्धि सिर्फ पर देखते हुए बैठा हुआ है, और पीछे जो आत्मा है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है।
सही, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण उपमा है, उपनिषदों में बताया हुआ है। तो सब कुछ हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं दुनिया के बारे में, वो हमारे इंद्रियों के द्वारा है ना। ज्ञानेंद्रिय अर्थात क्या, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन पांच से हम हमारे दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त जैसे करते हैं, फिर ये जानकारी मन को जाती है। जब मन को जाती है तो मन देखता है, अरे ये अच्छा है मुझे चाहिए, नहीं वो बुरा है मुझे नहीं चाहिए। तो मन निर्णय लेता है, फिर मन के निर्णय के अनुसार फिर बुद्धि बोलता, हाँ मन को ये चाहिए ना, तो चलो मन की इच्छा को पूरी करो। तो बुद्धि अपना काम शुरू करती कि कैसे ये इच्छा को पूर्ण करे। अब समस्या ये है कि क्योंकि इंद्रियां इधर उधर जाती रहती हैं और मन भी उनके पीछे पीछे जाता रहता है, तो अलग अलग जगह कल्पना कीजिए, जब घोड़े हैं पांच घोड़े, कभी इधर कभी उधर, रास्ता सीधा है लेकिन घोड़े कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं कभी उल्टा जाते हैं, तो सोचिए कैसे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो रथ तो स्थिर नहीं हो सकता है, तो और उसके साथ तो रथ को यदि स्थिर करना है, सही दिशा में ले जाना है, तो घोड़ों को स्थिर होना चाहिए। लेकिन घोड़े जो हैं वो किस पे किससे किसके काबू में है, लगाम के, लगाम जो रस्सी होती है जिससे घोड़ों को पकड़ते हैं, तो लगाम अर्थात मन वो मुख्य इंद्रिय है, परंतु इंद्रियों को वश में करने के लिए यदि मन को वश में करना है तो मन को वश में कौन करेगा, जो सारथी है, और सारथी ने ही 4 दिन से उपवास किया हुआ है, उसको उसने नींद नहीं, उसको नींद भी नहीं हुई ठीक से, तो फिर क्या होगा, वो बहुत कमजोर रहेगा, दुर्बल रहेगा, और दुर्बल दुर्बल रहने के कारण उसमें शक्ति नहीं होगी वो उसको लगाम को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए। तो इसलिए घोड़े और लगाम दोनों अपने ओर चले जाएंगे, बेचारा सारथी ऐसे ही करता रहेगा, वो जहाँ जा रहा जहाँ जा रहे ऐसे उसको लेते जाएगा है कि नहीं, घोड़े इधर गए तो वो भी चलो उधर जाएंगे। वो हिंदी में क्या कहावत है, गंगा जाए गंगा पार, यमुना जाए यमुना पार, इसको मालूम है क्या, ऐसे कोई कहानी है, एक कहावत है, जो जैसे जाता है बहता है वैसे बहके जाता है, जहाँ जैसे अच्छा लगे वहाँ चलो, फिर अगले क्षण दूसरे को जो अच्छा लगे वहाँ चलो, ये मन है। जो हमें इंद्रियों को अच्छा लगता है, जो मन को अच्छा लगता है, उस दिशा में बहते जाओ, कभी उधर कभी उधर, कोई निर्धारित कोई निश्चित दिशा नहीं जीवन में, कहाँ जाना है क्या करना है। जैसे एक कोई चीज़ तैर रही है समुद्र में, लहरों से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ना उसको कुछ दिशा है ना कोई कुछ, तो वैसे हम रहते हैं जीवन में। तो मुख्य चीज़ क्या है, बुद्धि, बुद्धि को स्थिर यदि हमें करना है, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, यदि हम बना सकते हैं तो फिर लगाम और घोड़े नियंत्रित हो जाएंगे। तो बुद्धि को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, जो सारथी होता है उसको शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, भोजन देके ना, उसका आहार चाहिए। तो बुद्धि का आहार क्या है, शास्त्र, शास्त्रों का ज्ञान। जब शास्त्रों का श्रवण हम करते हैं बार बार, भगवद गीता भागवतम हम पढ़ते हैं और हरिनाम भी सुनते हैं, इससे बुद्धि तीव्र हो जाती है, बुद्धि में वो विवेक शक्ति आ जाती है, जिससे कि फिर हम मन को कह सकते हैं नहीं पकड़ लो, पकड़ के नहीं तुमको उस दिशा में नहीं जाना है, फिर घोड़ों को भी पकड़ सकते हैं। ऐसे बैलगाड़ी में भी ऐसे ही, बैलगाड़ी चलाने वाला ऐसे करता है ना, कभी कभी उसको बैलों को नियंत्रित करना पड़ता है, अभी रुक जाओ, बाएं चलो दाएं चलो, तो बुद्धि की शक्ति ऐसे मिलती है। वैसे बहुत बुद्धिमान लोग भी हैं जगत में, परंतु उनकी बुद्धि का पोषण भौतिक तत्वों से आता है, इसलिए यद्यपि वो तथाकथित बुद्धिमान हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन के लिए उनकी बुद्धि बहुत हानिकारक है। बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि केवल भौतिक सृष्टि का विश्लेषण करने के लिए, भौतिक सृष्टि में कुछ आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति बहुत निपुण हो जाए, ये बुद्धि नहीं है। वास्तविक बुद्धि है सत्य और असत्य में भेद करने के लिए, जो सच है झूठ है उसमें भेद करने के लिए, जो भक्ति है जो भक्ति नहीं है उसमें भेद करने के लिए, ये असली बुद्धि है। तो भले कोई व्यक्ति ज्यादा शिक्षित न भी हो भौतिक दृष्टि से, परंतु उसमें ये बुद्धि है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है परंतु उसे पता है कि ये भगवान के लिए करना है और ये बाकी जो है ये भगवान से संबंधित नहीं है, इसको त्यागना है, वो उस व्यक्ति की बुद्धि बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिकों की बुद्धि से परे है, बड़े है। तो इसलिए बुद्धि को चाहिए कि उसका पोषण नियमित रूप से होता रहे श्रवण कीर्तन में, तब बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी। यहाँ पे इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, इसके पहले वाला श्लोक में ऐसे है, नारद मुनि ने राजा प्राचीन परिषद से आगे कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्रानुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में यहाँ पर नारद मुनि राजा को कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार यदि हमने कर्म किए तो फिर हम बंधन में नहीं फंस जाएंगे, और यदि ऐसा नहीं किया तो क्या होगा वो आज के श्लोक में बता रहे नारद मुनि। तो फिर से अनुवाद पढ़ते हैं, अन्यथा, अन्यथा मतलब यदि हमने शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं किया। शास्त्रों के अनुसार कार्य कब कर पाएंगे, जब हम कम से कम हमने सुना है, और केवल एक बार सुनना काफी नहीं है, बार बार सुनना है, प्रतिदिन सुनना है, ये बहुत आवश्यक है। तो अन्यथा जो मनुष्य मनमाना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए खो जाता है। तो जब व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन ठीक से नहीं करता और मनमाने ढंग से कर्म करता है तो वो मिथ्या अभिमान का शिकार भी हो जाता है। मिथ्या अभिमान, अहंकार, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो भले कोई व्यक्ति शास्त्रों को भी जाने, बहुत बुद्धिमान भी हो, परंतु यदि मिथ्या अभिमान का शिकार बन जाता है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मिथ्या अभिमान के लक्षण कैसे होते हैं आप बता सकते हैं? किस प्रकार के लक्षण होते हैं मिथ्या अभिमान के, अहंकार के? एक एक करके, एक दो तीन। हाँ,
अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है।
अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, ठीक है। और मैं और मेरा, ठीक है। और
भौतिक प्रसिद्धि,
भौतिक प्रसिद्धि के लिए, ठीक है। और
आदर,
दूसरों को आदर नहीं देता है, जिनको आदर देना चाहिए भी उनको नहीं देता है। और इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा फिर लग जाता है। और
अपने ही परिवार संबंधियों से, मतलब कि वही सबसे अच्छा है।
पहले बोल के मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं एक शब्द के लिए ढूंढ रहा हूँ, एक शब्द, स्वतंत्र। फिर वो सोचता है मैं स्वतंत्र हूँ, ये सबसे बड़ा खतरा है मिथ्या अहंकार के। और बहुत सारे खतरे हैं, परंतु जब व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मानने लगता है तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है, खास करके भक्ति के जीवन में भी। यदि एक बार व्यक्ति ने सोचना शुरू कर दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं दूसरे भक्तों पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने मन के अनुसार जो करना है वो करूँगा, तो फिर उसका जो एक आश्रय है, उसके लिए जो एक सुरक्षा का जाल है, वो निकल जाता है। तो मिथ्या अहंकार का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी समस्या ये है। हम जब भक्तों से भी अपने आप को स्वतंत्र समझ लेंगे, भक्तों की परवाह नहीं करेंगे, भक्तों की राय नहीं लेंगे, उनका सलाह नहीं लेंगे, उनकी शुभकामनाएं आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो फिर समस्या हो जाती है। इसलिए अहंकार से और स्वतंत्र जीवन से बहुत बचना चाहिए। स्वतंत्र होने से फिर व्यक्ति केवल अपने मन के आश्रय में रहता है और उसका मन तो पागल होता है सबका। हर एक व्यक्ति का मन तो पागल है। एक पागल व्यक्ति के या नशे में होने वाले व्यक्ति के हम शरण में जाएं तो क्या होगा, है ना? एक शराबी है, शराब पी के उन्मत्त है, पर हम बोलेंगे उसको जाके आप मेरे नेता है, आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा, तो क्या हाल होगा हमारा? वो तो खुश हो जाएगा कि तुम मेरे अनुयायी बन गए है ना, आओ चलो हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उसके पीछे पीछे हम जाएंगे। अंधा यथांधे पिगीमाना तेपी शतंत्र्याम गुरुधाम ने बद्धा है। अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है तो नारकीय अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है तो अपने ही मन के अनुसार वो कार्य करता है, दूसरों की सलाह, दूसरों का आशीर्वाद, शुभकामना इसको महत्व नहीं देता है। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि खास करके कलयुग में हम अन्यों पे बहुत निर्भर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है, या इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हर छोटी चीज़ के लिए हम दूसरों के पास जाके पूछे, मैं दो चपाती लूँ कि तीन चपाती लूँ, बोलो प्रभु मैं दास हूँ, वैष्णवों का दास हूँ, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, आप बताइए, ऐसा नहीं। लेकिन जो जीवन की महत्वपूर्ण बातें होती हैं इनके लिए तो कम से कम भक्तों के संग में रह के ये आश्रय स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये स्वतंत्रता की जो भावना होती है वो वैष्णव सिद्धांत से बहुत विपरीत होती है, क्योंकि वैष्णव भावना क्या है कि हम वैष्णवों के मालिक हैं, है ना? नहीं, ओ भूल गया, हम वैष्णवों के दास हैं। वैष्णव के दास है ये भावना यदि हमारे अंदर से चली गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अभी तुर्की देश में बहुत बड़ा भूकंप हुआ, 5 भूकंप एक के बाद एक के बाद एक, 5,000 से अधिक लोग मर गए, बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो ताश के इमारतों की तरह गिर गए। आशा करता हूँ आपने ताश खेला नहीं होगा पहले, लेकिन ताश से भी कभी कभी बच्चे लोगों बनाते हैं इमारत, एक के ऊपर एक रख के ऐसे, तो थोड़ा कुछ हो गया एक एक को नीचे हल्का करके पूरा बड़बड़ बड़बड़ बड़ गिर जाएगा। उसी प्रकार से ये जितने भी बड़े इमारतें हैं उनके लिए आधार पृथ्वी है, पृथ्वी ही हिल जाएगी पूरा इमारत भाड़ करके गिर जाएगा, है ना? कितना भी बड़ा इमारत क्यों ना हो। उसी प्रकार से ये वैष्णवों का दास होना, वैष्णव दासत्व की जो भावना है ये हमारी बुनियाद है, ये हिल गया इमारत गिर जाएगा। इसलिए ये जो भावना है कि मैं भक्तों का दास हूँ ये बहुत तीव्रता से अपने को मन में रखना चाहिए। ये मन में रहेगा हम वैष्णवों की सेवा में रहेंगे, भले मतभेद होंगे कोई बात नहीं, मतभेदों को भी का समाधान किया जा सकता है साथ में बैठ के चर्चा करना, विचार विमर्श करना, ये सब हो सकता है और होता है, परंतु मन से अपने आप को वैष्णवों का दास मानना है तब फिर सब ठीक रहेगा। एक भावना नहीं रहेगी तो गड़बड़ हो जाता है फिर। इसलिए आज के कथा का भी सार ये है कि शास्त्रों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, मिथ्या अभिमान का शरण नहीं ग्रहण करना चाहिए, शास्त्रों का और भक्तों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
गुरु साधु और शास्त्र एक ही समान है, तो अभी पिछले कुछ दिनों से जो भी घटनाएं घट रही है उसके बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता था कि सबको यहाँ पे पता है कि भक्त तो यहाँ से थोड़े दिनों के पहले निकल गए और ऐसे कुछ कुछ घटनाएं हुई जो हमको समझ में भी नहीं आ रही थी, इतने तेजी से सब हो रहा था और सब भक्त खास करके ब्रजेश प्रभु, मैं, हरिराम प्रभु, ये सब समझा रहे थे कि ऐसे मत करो, ठीक नहीं है, थोड़े रुकेंगे, सब समस्या का सुलझाना दीजिए, जो बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि
जटिलताएं
आ रही थी। फिर भी कैसा है कि इतना सब सुनने के बाद भी एक व्यक्ति के बुद्धि के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाए, यानी कि इतना सब लोगों ने समझाया और दिख भी रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, फिर भी एक व्यक्ति वैसे ही जानना चाहता है, ऐसे कैसे हो सकता है?
वही बात है कि जब हम अपने आप को वैष्णव दास नहीं समझते हैं, मैं ही जो सोच रहा हूँ, मैं ही जो कर रहा हूँ वही सही है, समस्या हो जाती। जब हमसे जो वरिष्ठ है हमको समझा रहे हैं, हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमारे अहंकार के कारण हम सुनते नहीं हैं और हमको जो मन में आए वही हम करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे समस्या हो जाती है। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए तो हम बता रहे थे कि अपने आप को वैष्णव दास समझना बहुत आवश्यक है। वैष्णव दास समझना ये केवल एक बोलने की बात नहीं है कि मेरा दास कृष्ण दास है, जगन्नाथ दास है, राम दास है, केवल दास दास नाम होने से पर्याप्त नहीं है। वास्तव में हमें दास बनना चाहिए। दास का काम है कभी कभी सुनना, कभी कभी तो सुनना चाहिए। हम नहीं सुनेंगे तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। जब हम स्वतंत्र भाव रह जाता है कि मुझे जो करना है वही करना है, या वो एक बार एक कभी कभी ऐसा भूत सवार हो जाता है जैसे हो जाता है, जब हो जाता है तो उस समय कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, मानसिक स्थिति नहीं रहती व्यक्ति की सुनने की। जब उसके मन में वो कुछ आ जाता है, वो भूत सवार हो जाता है, तो फिर वो कोई भी आके बोले, भगवान कृष्ण भी सामने आके बोलेंगे कि भाई ऐसे करो, वो मन मानता नहीं। इसलिए यदि पहले से ही हम वैष्णव दासत्व की भावना को बना के रखें अपने हृदय में, उसको कम होने न दें, तो फिर हमारे लिए भी बहुत सुरक्षा है इसमें। तो ये दुनिया बहुत खतरों से भरी हुई है, थोड़ा इधर उधर किया फिसल जाते हैं हम, फिसल जाके फिर हड्डी टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा, है ना। हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। अहंकार से हम अपना अपना मन के अनुसार करेंगे, नहीं, मैं ही जो कर रहा हूँ वही सही है, तो फिर समस्या है। तो बहुत जल्दी से ये सब चीज़ें हो गई, अचानक, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और क्या कर सकते हैं अभी, एकदम से झट 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 करके सब हो गया फटाफट फटाफट, समझने के पहले भी इतना कुछ हो गया था।
तो आपको तो क्या संभावना है हमारे कि ऐसा व्यक्ति फिर उसके अपनी भूल को समझ के वापस आए उसके लिए कुछ?
संभावना तो हमेशा है कि व्यक्ति अपने भूल को समझ जाएगा, वापस आ भी जाएगा भक्ति में, अवश्य संभावना है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतने सालों से सेवा की है, हृदय से किया है ना सेवा, जितने साल भी किया है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से किया है, हृदय से किया है सेवा, सिंसियरली किया है, खूब परिश्रम किया है भगवान के लिए, बहुत हरिनाम भी लिया है, बहुत सेवा किया है हृदय से, तो भगवान भी उसको टुकराएंगे नहीं। परंतु भगवान ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे, व्यक्ति को जब अपनी बुद्धि ठिकाने आ जाती तभी वो आ जाएगा वापस। लेकिन इस समय जब हमारे उसमें अहंकार उतना आ जाता है कि हम बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तब कोई भी कुछ कर नहीं सकता मदद के लिए उसकी, तब फिर ठोकर खा के ही व्यक्ति कभी कभी सीख जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम सब स्वेच्छा से आए हैं, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता बंदूक रख के कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। जिसको पालन करना है वो करेगा, प्रेरणा जिसको मिलती है, जैसे कि हम भक्ति में आए हैं, ये आंदोलन, ये रास्ता, ये स्वेच्छा पर निर्भर है। आज कोई भक्ति गोकुल धाम में है, उसको भक्ति अच्छी लगती है, कल उसने सोचा मुझे नहीं करना है, तो उसकी स्वेच्छा है, वो फिर जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती तो हम नहीं करेंगे ना किसी के साथ। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना है लेकिन अपने आप को भी संभाल के रखना है, नहीं तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होने की संभावना रहती है। और हाँ, वापस आने की संभावना तो पूरी पूरी है, भक्ति में आशा करते हैं कि वो है, जहाँ भी है अभी माला वगैरह कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ऐसे आशा करते हैं। परंतु आगे चल के कैसे क्या होगा अभी देखेंगे, भगवान ही जाने कैसे क्या करेंगे।
तो वो जैसे अमेरिका में जो केस है, लोग पूरा चारनी मुँह को बंद करने वाला लोग ही थे, और उन लोगों के लिए आश्रय दिया था और उनको ही बड़ा किया। मगर हमको ये प्रश्न पूछते, आप लोग जो है ऐसा परिस्थिति में लोगों को बाहर भेज देते हैं और उनको आश्रय नहीं देते हैं, आप बुरा किया तो आप इधर ही रख के उनको सपोर्ट करना चाहिए, और वो जो भी कर रहे हैं आपको, तो आप उसको ऐसा हाथ नहीं छोड़ सकते, ये समझ।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, किसी का कोई गलती हो जाना, हाँ ये एक बात है, लेकिन जानबूझ के उत्पात करना, उत्पात करके चले जाना, उपद्रव मचा के पूरा तहस नहस करके चले जाना, ये दूसरी बात है। भक्तों के बार बार बताने पर भी बात नहीं मानना, तो ज़िद्द होके फिर कुछ ऐसे गड़बड़ कर देना, वो अलग बात है, उसमें सारे समाज में उपद्रव मच जाता है, फिर सारे संस्था का नाम खराब हो जाता है, भक्त लोगों की भक्ति विचलित हो जाती है, हाँ बदनामी हो जाती है सबकी। तो इसलिए ये अलग बात है। जैसे भी कोई नया नया आ रहा है, किसी भी गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसको शराब पीने की आदत है, हम ये नहीं बोलेंगे कि मंदिर में मत आओ, क्योंकि वो हफ्ते में दो बार तीन बार शराब पीता है इसलिए मंदिर में छोड़ेंगे नहीं, सत्संग में नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। हम उनको बुलाएंगे, उनको प्यार से बर्ताव करेंगे और धीरे धीरे से भक्ति में लाएंगे, फिर वो माला करते करते फिर वो भी भक्ति में आगे बढ़ेगा, उसके भक्ति में रस आ जाएगा, फिर वो शराब धीरे धीरे से छोड़ देगा, ये बात है। और फिर वो भक्ति में आ गया, भक्ति में आने के बाद क्योंकि उसकी पुरानी आदतें थी शराब पीने की, एक बार फिसल के फिर से उसने शराब पी लिया, तो उस समय हम उसको नहीं बोलेंगे अरे तुम दुष्ट हो, असुर हो, नहीं, हम प्रेम से उसको लेंगे, प्रभु ज़रा ख्याल रखो, अभी मत जाओ उधर, हाँ ये एक प्रकार का काम है। लेकिन अभी इस प्रकार से जो बार बार भक्तों के बताने से फिर ऐसा उत्पात करके जाना, फिर हम ऐसे साथ नहीं दे सकते, उसके लिए भी अच्छा नहीं है और जो भी उससे संबंधित है उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे गोकुल धाम के लिए अच्छा नहीं है, संस्था के लिए नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है। कि किसी को गृहस्थ बनना है उसमें कोई आपत्ति नहीं, ब्रह्मचारी को गृहस्थ बनना है बन सकते हो, उत्पात करके नहीं करो कुछ, उपद्रव करके पूरा हल्ला गुल्ला करके पूरा ये करके मत करो। कोणाला गृहस्थ व्हायचं असेल होऊ दे, व्हायला काही हरकत नाही, पद्धतीशील असलं पाहिजे। गडबड करून उत्पात करून करणं म्हणजे ते बरं नाही, पूरा उल्टा पुलटा करके छोड़ दे के जाना, तहस नहस करके जाना, तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसे हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो दया कैसी होनी चाहिए, कब देनी चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए, किस परिस्थिति में, वो भी थोड़ा भेद करना चाहिए। फिर भी ठीक है, जो आशा करते हैं हमने भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सेवा किया है ना देव के तले में, इतना सेवा किया है, पूरा अपना जीवन अपने तरुण अवस्था में भगवान के लिए दिया है, तो वो भी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वो अच्छा सेवा किया, हम यही प्रार्थना करेंगे, हम सब शुभचिंतक है कि आगे चल के कभी उसका वो ठीक हो जाए, जीवन भक्ति में तीव्रता से आ जाए, यही हम प्रार्थना करेंगे। परंतु अभी काफ़ी समय तक तो ऐसे कोई संभावना नहीं है कि वो अभी फिर से यहाँ आके जुड़ जाए।
ऐसे विषय के लिए हम लोग उनको थोड़ा पैसा देके सपोर्ट करना चाहिए, इतना साल हमने अपनी सेवा किया।
मैंने भी देवकी तेने कैसे बोला, देखो तुम गृहस्थ बन रहे थे, हम लोग भी व्यवस्था कर रहे थे ना तुम्हारे लिए, भक्त लोग अभी तुम्हारे लिए प्रयास कर रहे थे अच्छी तरह से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, तुम्हारे आर्थिक आवश्यकताओं के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे थे, तुम्हारे घर में कोई समस्या थी उसके लिए भी कुछ कर रहे थे, आगे तुम्हारे विवाह के लिए भी कुछ मदद करने की व्यवस्था कर रहे थे। जब सब कुछ पद्धति से क्रम से एक एक करके सब हो रहा था, तो ये सबको किसी को बताए बिना पीछे से जाके गड़बड़ 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 करके उत्पात करके ऐसे करना क्या फ़ायदा हुआ। फिर अभी आके यदि किसी को पूछोगे कि मुझे मदद करो, कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये बात है, पता है ना क्या भूत सवार हो गया, क्या हो गया अचानक, एक महीने में दो महीना, कितना महीना हो गया, लोग कस पीला काय झालं काय समजत नाही कस नाही। इसलिए ये भौतिक जगत बहुत खतरनाक है। इसलिए
महाराज प्रभु श्री रामचंद्र भी कहते हैं कि अगर रावण इतना सब कर रहे थे, रावण अगर आकर अभी भी मेरा चरण कमलों की आशा दिया तो मैं उनको क्षमा कर दूंगा। और भगवद गीता में भगवान भी बताते हैं अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे वसंते। तो फिर दोनों दृष्टिकोण से अगर वो आकर अभी भी आश्रय देना चाहते हैं तो क्या हम,
देखो आश्रय देने का मतलब क्या होता है, जब आश्रय लेने का समय था, बार 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 बताने के बाद जब सुना नहीं, तो फिर आश्रय लेने का समय जब था वो नहीं लिया, तो फिर जब गड़बड़ हो गया उसके बाद आके फिर बोलना अभी तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अभी कुछ परिस्थिति को इस तरह से बिगाड़ दिया है कि समाज में अभी लेंगे तो फिर अच्छा नहीं है, और फिर वो भी उसको गंभीरता से नहीं लेगा, फिर उसको बहुत हल्का लेगा। कि तो हर एक व्यक्ति भी सोचेगा हम भी ऐसे करेंगे, थोड़ा हमने बोल दिया हम आश्रय ले रहे हैं, कहे फिर से आ जाओ ना, ऐसे हल्का ले लेंगे सब, समझ गए ना। फिर मैं भी ऐसा कुछ करूँगा, फिर बोलूँगा कि चलो गड़बड़ हो गया, उत्पात हो गया, फिर एक दिन बाद मैं भी आ जाऊँगा, अरे मैंने आश्रय लेना है मुझे, ऐसे नहीं चलेगा ना। है कि नहीं। फिर भी हमें प्रार्थना करना चाहिए कि वो अच्छा रहे, उसका जीवन चले ठीक से, वो भी भक्त है, वो लड़की भी भक्त है, शायद मैं लड़की को नहीं जानता कौन है, वो भी होगी कि, और बहुत सेवा भी किया है, वो भी हमें नहीं भूलना है, सिंसियरली किया है, हृदय से किया है। लेकिन हर चीज का समय होता है।
ये भी प्रश्न पूछा था कि आपका दृष्टि से वो गलत है, मगर उनका जगह में जाके आप सोचेंगे और वो जो भी किया है वो सही है, तो आप एक ही साइड से
नहीं, उनका दृष्टि हमारा दृष्टि नहीं है, शास्त्रों का दृष्टि, वही तो बात है विषय का। ये मेरे दृष्टि आपके दृष्टि किसी की दृष्टि की बात नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमको क्या ज्ञान दिया है, क्या बतलाया है, शास्त्रों ने क्या कहा है, वो दृष्टि से हमको देखना है, ये सही। क्या मतलब होता है?
हाँ महाराज, हम ऐसे घटना से समझ सकते हैं कि उनका कर्म ऐसा है या उनका प्रारब्ध में लिखा हुआ होगा उसी के कारण हो रहा है, ये हम समझ सकते, कैसे समझ सकते हैं इसको?
प्रारब्ध में वो वृत्ति है, वो वृत्ति है, परंतु अंततः काम करना नहीं करना वो फिर वो हमारे हाथ में है, खास करके जब हम भक्ति में रहेंगे। ठीक है,
ये शुरुआत ऐसे विचार भरा, कई शुरुआत कैसे होता है, मतलब कि एक ही महीने का बात नहीं होगा क्योंकि
हाँ, इसके पीछे बीज तो बहुत पुराना होगा, फिर कहीं तो बीज तो होगा पीछे,
तो शुरुआत इसका कैसे होता है? अभी हमारा दिन अच्छा चल रहा है, अभी फॉर एग्जांपल मेरा चल रहा है, तो अचानक से ऐसा आना, मतलब कि उसका शुरुआत कहाँ तो होगा, तो वो कैसे आता है बीज, ऐसा कैसे कैसे आता है?
इसलिए हम बोलते हैं ये फोन है ना, ये फोन, फोन से बहुत सावधान रहना, ये सब फोन से शुरू हो गया है। इसलिए आप लोग यहाँ कम से कम जितना ही काम के लिए चाहिए उतना ही फोन इस्तेमाल करो, बस ये फोन ही सबसे कमबख्त गड़बड़ करने वाला है काम। फिर अकेले रह के फिर फोन 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 पे इसको बात करो, उससे बात करो, ये करो वो करो, किससे करना, उससे सब शुरू हो जाता। इसलिए अभी यहाँ कुछ ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि अलग अलग लोगों के पास फोन होगा नहीं होगा, तो केवल गोकुलधाम में एक जगह वहाँ जाके फोन रखा होगा, जिसको फोन करना है वहीं जाके बात करके वापस जाओ, अपने पास रख के फिर कहीं उधर भी जाके फोन किया, उधर जाके फोन किया, ऐसा नहीं करना है। बाहर की दुनिया में तो है ही, कम से कम गोकुलधाम तो एक जगह है जहाँ पर हम लोग ये नियम का पालन करते हैं, यहाँ पर भी अभी वो सब आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा और पूरी जो शांति इधर की भी भंग हो जाएगी। हाँ, फिर देख ले, गौशाला में एक रिंग नेटवर्क जहाँ आता है, टावर जहाँ पे आता है, वो एक जगह में फ़ोन रखो, जिसको फ़ोन करना है वहाँ जाके करे, और केवल सेवा के लिए करे, टाइम पास के लिए नहीं करे, और फिर वहाँ से चले जाए। ठीक है,
मूल कारण है कि स्वतंत्रता को ध्यान में, तो हम इस स्वतंत्रता का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे त्याग सकते हैं? यह आभार
भक्तों के दास बन के, ये मेन चीज़ है। इसलिए महाप्रभु का मूल सिद्धांत यही बार बार घूम फिर के यही आता है, घूम फिर के वही बात। गोपी भक्त हूँ पद कमल योर दास दासानु दास है। सबसे सुरक्षित स्थान हमारे लिए ये। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।